और कैसे कैसे मशवरे हम इंसान, हम मुसलमान औरतें दूसरी औरतों को देते हैं। आप कभी कहानियाँ सुने औरतों से, मुर्गी का पंजा विजाइनल ट्रैक में रख लो ताकि बच्चा अबॉर्ट हो जाए, सूखी शाख लकड़ी की उसको ऊपर से छुरी से काट के अपने विजाइना में रख लो ताकि बच्चा अबॉर्ट हो जाए, ओपियम को, एक तरह की शराब जो है उसको कॉटन में भिगो के, रुई में भिगो के अपने विजाइनल ट्रैक में रख लो ताकि बच्चा अबॉर्ट हो जाए। और ऐसी कई चीज़ें सोनोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आती हैं, जब दाइयाँ काम बिगाड़ देती हैं तो उसके बाद आती हैं, उसके बाद उनका फिर क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में फोर्थ मेजर फैक्टर औरतों की मौत का आज भी पोस्ट अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सब हो रहा है। अगर डॉक्टर्स ये काम कर रही हैं तो डॉक्टर्स को अपने रब को राज़ी करके अपने से सवाल पूछने की ज़रूरत है। ये हिपोक्रेटिक ओथ खुद लेते हैं हर डॉक्टर अपने आखिरी साल में मेड स्कूल के, और उसमें ये अल्फाज आते हैं कि मैं किसी अपने पेशेंट को ऐसी काउंसिल या ऐसी दवा नहीं दूंगा जिससे कि उसका हमल गिर जाए, जिससे कि उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाए। और उसके बाद जो ओथ के अंदर अल्फाज होते हैं कि अगर मैं सिंसियर रहूं, खुलूस के साथ अपना काम करूं तो अल्लाह की रहमत मुझ पर हो, और रहमत का ऑपोजिट क्या होता है, जागने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ डॉक्टर्स पर उंगली नहीं उठा रही, मैं हम सब ख़वातीन की बात कर रही हूँ। हम कहते हैं डॉक्टर ने ओथ लिया, वादा किया और वादा खिलाफी की, तो हम सब भी तो वादा खिलाफी करते हैं। हम हर नमाज में इशा की जब वितर पढ़ते हैं और वितर में अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हम आपकी नाफरमानी की सारे कामों से दूर होते हैं, तो जो हम कहते हैं क्या हम वो करते भी हैं? क्या हम ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी के कामों से दूर होने की कोशिश करते हैं? बाज़ औक़ात तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने गुनाहों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को कितना अकबर करते हैं? अपनी शादियाँ देख लें, अपनी सेलिब्रेशंस देख लें, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग देख लें, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना देख लें, अपना घूमना फिरना देख लें, औरत होने की हैसियत से अपना हाल हुलिया देख लें। हम कितना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को अकबर करते हैं। सबको अपने अपने मुकाम पर सोचने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते जिस अल्लाह को हम ज़िंदगी में अकबर कह रहे हैं, जब हम उस अल्लाह के सामने पहुँचें तो हम उस अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएँ या हमें उससे मायूस कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है जिसका मफहूम है कि जिसने कातिल की मदद उसके कत्ल में एक कलमे से भी की, कलमा कहते हैं एक सेंटेंस, एक जुमला, तो क़यामत के दिन उसके माथे पर लिखा होगा या ईसा मिन रहमतिल्लाह, ये शख्स अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया गया। आपकी मेड आपके पास आती है, आपकी मासी काम करने वाली आपसे कहती है, बाजी मेरे 6 बच्चे हैं, मुझे फिर हमल ठहर गया है, मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? आप कहती हैं अबॉर्ट कर दो, या आप नहीं कहती हैं, वो कहती है बाजी क्या मैं अबॉर्ट कर दूँ, आप कहती हैं हाँ हाँ कर दो। आपने एक जुमले से कातिल की मदद कर दी। अब आप खुद समझदार हैं कि आप अपने आप को कहाँ रखेंगे। जहाँ तक सवाल आता है फतवों का, अगर आपके पास फतवे मौजूद हैं तो मेरे पास भी फतवे मौजूद हैं। याद रखें मुफ्ती हजरत फतवा जब देते हैं वो केस स्पेसिफिक होता है। आपको हमने एक बुक मार्क दिया है, आप सबको बुक मार्क मिले, इस बुक मार्क के पीछे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको गौर से पढ़िएगा। इस बुक मार्क के साथ हमने आपको एक फोटोस्टेट पेज भी दिया है, अभी नहीं पढ़िएगा उसको, यहाँ सुन लीजिए और उसके बाद घर जाकर पढ़िएगा। याद रखिए फतवा केस स्पेसिफिक होता है। मेरे पास ऐसे कई हज़ार फतवे हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप डे वन से प्रेगनेंसी को टच नहीं कर सकते। डे वन से एक होता है फतवा और एक होता है तक्वा। दो चीज़ें हैं, सब समझते हैं ना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों में तकवा उतार दे, ताकि हमें फतवों को समझने की तौफीक मिल जाए। मौलवी को बदनाम करना बहुत आसान है, ख़ुद क्यों नहीं दीन की तालीम हासिल करते, ख़ुद क्यों नहीं निकल के इल्म हासिल करते, क्यों नहीं जाके देखते कि कुरान क्या कहता है और सुन्नत क्या कहती है, क्यों नहीं हम जाकर देखते कि कुरान और सुन्नत पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वालों ने कैसे अमल किया। सबसे बेहतरीन कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले सहाबा कैसे अमल करते थे, हम खुद जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। वैसे हमारे पूरे लाइफस्टाइल में मौलवी कहीं ना हो, शादी कैसे सुन्नत के मुताबिक करें, उस वक्त हमें मौलवी याद आता है? सिर्फ दो बोल निकाह के पढ़वा के उसको कहते हैं अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ आप जाइए और म्यूज़िक ऑन उसके बाद। और दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं, जब कोई मर जाता है तो मौलवी याद आता है कि आके सिपारे पढ़ दो, और बाकी पूरी ज़िंदगी में भाई मौलवी का ज़िंदगी में क्या काम, दीन अलग है और दुनिया अलग है। इन सब आपके नॉर्मल ज़िंदगी में जब हमें दिल चाह रहा होता है, हमारे फ्रेंड्स हमें कह रहे हैं, हमारा ख़ानदान हमें कह रहा है, हमारे बच्चे हमसे ज़िद कर रहे हैं अम्मा सिनेमा लेकर चलो, अम्मा सिनेमा लेकर चलो, तब आप जाके मौलवी से पूछती हैं ठहरो मैं मौलवी से पूछ लूँ सिनेमा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तब क्यों नहीं पूछते मौलवी से, हम कहते हैं वो मौलवी का काम थोड़ी हमें बताए। इस मुकाम पर मौलवी बड़े याद आते हैं हमें। अपने अपने दिल को खुद टटोलें। यहाँ असल में मौलवी का फतवा नहीं होता, मेरा नफ्स होता है। जो काम हम करना चाहते हैं उसकी बंदूक हम मौलवी के कंधे पर रख कर चलाते हैं। मौलवी का कोई कसूर नहीं है। कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई स्कॉलर, कोई शेख गलत फतवा नहीं दे सकता। हमारा नफ्स है जो हमसे दीन के बारे में कहता है उतना दीन लो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारे फ़ायदे का हो। क्या कहा है अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में, अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अन्फुसकुम, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो। हम खुद अकल से काम कर लें, हम मौलवी को अपनी ज़िंदगी में कितना इंटरफेयर करने देते हैं, तो इस जगह पर मौलवी क्यों याद आ जाता है, मेरा सबसे सवाल है। मेरा डॉक्टर से भी सवाल है, मेरा पढ़ी लिखी औरत से भी सवाल है, मेरा ना पढ़ी लिखी औरत से भी सवाल है। क्या ज़िंदगी का हर कदम मौलवी की बताई हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक गुजारते हैं? तो इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ें और फतवों का मिसयूज़ मत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस मौजूद है जिसका मफहूम है कि जिसने अपने बच्चे को इस सोच के साथ कत्ल किया कि कल को वो बड़ा होकर उसके साथ खाएगा, स्टेटस कॉन्शियस, इसका मतलब है कि उसने कबीरा गुनाह किया। और कई तरीके हैं अबॉर्शन के, मैं इस वक्त अबॉर्शन के तरीके नहीं यहाँ बताने बैठ रही हूँ। आप सबको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह से आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बच्चे अबॉर्ट हो रहे हैं। वैक्यूम का जो तरीका होता है उसमें बच्चे के टुकड़े जो हैं उस वैक्यूम के अंदर आते हैं और जार में इकट्ठे होते जाते हैं। इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफ बनाया था, सुपीरियर क्रिएशन बनाया था, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, ये इस इंसान के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है, वो काम वो कर जाता है। आप सबको मालूम होगा कि आजकल प्रीमेच्योर बर्थ जो है वो बड़ी कॉमन हो गई है। 24वें वीक के बाद, 24th वीक के बाद अगर बच्चा पैदा होता है उसके सर्वाइवल चांसेस होते हैं अगर उसको प्रॉपर मेडिकल एड दी जाए। 24वें हफ्ते पे अगर बच्चा डिलीवर हो, जो तकरीबन 6 महीने आपके बनते हैं, अगर इसी इंसान को औलाद चाहिए हो तो कैसे 2-2 महीने माएँ इनक्यूबेटर के साथ बच्चे के साथ हॉस्पिटल में रहती हैं। इसी औरत को अगर वो बच्चा ना चाहिए हो तो 24 हफ्ते पर बच्चे अबॉर्ट भी होते हैं और हो रहे हैं। हकीकत छुप नहीं जाती आँखों पर हाथ रख लेने से। अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर ये खूबी रखी है कि इंसान जिस चीज़ का इरादा करता है वो काम कर जाता है। जहाँ तक ये स्लोगन है कि कम बच्चे खुशहाल घराना, ये थ्योरी कहाँ से दुनिया के अंदर आई, 17th सेंचुरी के अंदर मैल्थ्यूज नामी एक शख्स था जिसने यूरोप के अंदर ये बात कही थी कि दुनिया की आबादी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे आप कहती हैं 4+4 8 होता है ना, एक्सपोनेंशियल रेट होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो 16 हो जाता है।